बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिविंग विद विजन, सेशन नंबर 3। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा अपॉलोजी कि ये सेशन बहुत लेट हो गया है और लिविंग विद विजन एक लिहाज से एक रिडंडेंट ग्रुप लगने लगा था कि इसमें शायद अब हम और सेशंस बिल्कुल नहीं भेज रहे। बात दरअसल ये है कि मैं आजकल अपने एक इम्तिहान में मसरूफ़ हूँ और मेरी जो को एडमिन्स हैं वो भी, थैंक्स टू देम कि वो मुझे बग नहीं करती हैं, मुझे बार बार ये नहीं कहती हैं कि आप कहाँ चली गई हैं। वो अपनी तरफ से मुझसे डिस्कस करती हैं, कोशिश करती हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं अभी उनको कुछ भी बता नहीं सक रही कि हमने आगे इस ग्रुप में क्या करना है। तो एनीवे, आज मैंने एक एक्सरसाइज की खासी लंबी, 2-3 दिन से मैं उसमें लगी हुई हूँ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई है। तो जो पिछले सेशन तो नहीं था, एक मैंने आपको तस्वीरें वगैरह भेजी थीं और एक आर्टिकल भेजा था जो विज़न बोर्ड के बारे में था, और हम लोग लातहज़न में और अब ये लिविंग विद विजन के जो एक दो सेशंस हुए हैं इसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियरली सीख लिए हैं। सबसे बड़ी बात तो जो हमने सीखी है इसमें वो ये है कि एक ज़िंदगी, हमारी जो भी जिंदगियां हैं वो बग़ैर प्रायोरिटीज़ के नहीं बैलेंस हो सकती हैं। जब तक हमें अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं पता होंगी, जब तक हमें अपनी तरजीहात नहीं पता होंगी, हम लोग एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हर लम्हे में हमने एक फ़ैसला करना होता है, एक चॉइस करनी होती है। जैसे अगर बच्चा रोना शुरू हो जाए तो वो उस लम्हे में हमारी तरजीह होता है, वो हमारी प्रेफरेंस होता है, वो हमारी प्रायोरिटी होता है। हम उस वक्त अगर कोई भी काम कर रहे हों, हत्ता कि अगर हम बाथरूम में भी बंद हों, लेकिन बाहर से अगर बच्चे के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आए तो हम यकीनन हर एक काम छोड़ के उस बच्चे की तरफ लपकेंगे और उसका जो भी मसला होगा उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये नेचुरल प्रायोरिटीज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। तो एक दफ़ा जब हम लोगों ने प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचा और उनकी हमने एक्सरसाइज़ की कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे मालूम करें, तो उस एक्सरसाइज में हमने फिर रोल्स एंड गोल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने सीखा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ तभी पता चल सकती हैं जब हमें अपनी अपना मेन किरदार पता चले। ये जो पूरी ज़िंदगी का एक ड्रामा चल रहा है, हर किसी की एक ज़िंदगी है और हर किसी के रिलेशनशिप्स हैं और हर किसी के ड्रीम्स हैं, हर किसी के एम्स एंड एम्बिशंस हैं, तो उस चीज़ में और उस गैलेक्सी में जब तक हमें अपनी जगह का नहीं पता चलेगा, हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं सेट कर सकते। तो हमने रोल्स एंड गोल्स सीखा था कि ज़िंदगी में जो हमारे इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं वो क्या हैं, और वो भी खासी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज हुई थी लातहज़न में, जिसमें हमने ये सीखा था कि हमारा पहला रोल जो है, ज़ाहिर है हम अल्लाह की मखलूक हैं, तो वो हमारा अपने खालिक के साथ जो रिश्ता है उसकी वजह से जो हमारा रोल है खालिक के सर्वेंट का या अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से हम मोमिन हैं, अल्लाह के बंदे हैं और हम उसकी रज़ा में और उसकी विल में हम लोग बंधे हुए हैं, और ये हमारा एक लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तरजीह है, चाहे हम उसको वर्बलाइज करें या ना करें, चाहे हम उसे अपने दिल में रिवाइज करें या ना करें, लेकिन हमें अनकॉन्शियसली ये पता है कि हम सब आखिरत में और अपनी इस ज़िंदगी के एंड में कामयाब होना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हम अपने खालिक से मिलें तो हम एक खूबसूरत और खालिस दिल लेकर जाएं और एक बेहतरीन आमाल नामा लेके जाएं जिससे हमारा खालिक खुश हो और जिस मकसद के लिए उसने हमें इस दुनिया में भेजा है वो मकसद हम लोग जितना भी हो सके अपनी टूटी फूटी काविशों के ज़रिए फुलफ़िल करके हम अपने खालिक से मिलें और वहाँ पे हमें सुरखरुई हासिल हो। ये एक मुसलमान होने की हैसियत से और मोमिन होने की हैसियत से अल्लाह का बहुत बड़ा फ़जल है कि हमें अपना ये वाला गोल बिल्कुल क्लियरली पता है, हमें ये रोल भी बिल्कुल क्लियरली पता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम उसके सर्वेंट हैं, हम उसकी रज़ा में खुश हैं, या हमें उसकी रज़ा में खुश होना चाहिए, और हमारे बाकी सारे रिश्ते जो हैं और बाकी सारे जो हमारे रोल्स हैं वो इस रोल के ताबे हैं। तो फिर ये रोल डिटरमिन करने के बाद हमने इसका गोल भी डिटरमिन कर लिया कि हमने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जो हमारे खालिक को खुश करे, और जो हमारा खालिक ये कहे कि हाँ, मैंने जिस मकसद के लिए इसको भेजा था इसने अपनी पूरी कोशिश की है वो मकसद हासिल करने के लिए। इस पॉइंट पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया विजन का। जब ये रोल हमने डिटरमिन किया और जब हमने ये कहा कि इस रोल के ज़रिए हम ये हासिल करना चाहते हैं, तो एकदम से बात क्लियर हो गई कि इस रोल का, हमारा मोमिन होने का या मुसलमान होने का जो किरदार है उसका एक गोल है। और इसी तरह जो भी हमारे ज़िंदगी में किरदार हैं, जितने भी हमारे रोल्स हैं, हर एक के साथ गोल लगे हुए हैं। हमने वो किरदार प्ले करना है, हमने उस किरदार की डिमांड्स पूरी करनी है, उस रोल को हमने फुलफ़िल करना है, और उसके ज़रिए हमने वो गोल हासिल करने हैं जो हर एक रोल के साथ बंधे हुए हैं, और वो ऑटोमेटिक हैं। तो ये भी एक बड़ी फ्रूटफुल एक्सरसाइज थी जो हम सब ने की थी कि हम अपने रोल डिफ़ाइन करें। जैसे मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की बहन हूँ, तो ये सारे मेरे रोल्स हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने सारी उम्र पढ़ाई की है और मैं डॉक्टर बनी हूँ, ये भी मेरा एक रोल है। मसीहा के रूप में मैं इलाज कर सकती हूँ बच्चों का, या मैं उनके पेरेंट्स को तसल्ली दे सकती हूँ, ये भी मेरा एक रोल है। तो ये रोल्स हम लोगों ने अपने डिटरमिन किए और ये सारे हमने डिटेल से लिखे। उम्मीद है कि आप लोगों ने साथ साथ वो एक्सरसाइजेस की होंगी और आपने भी अपने रोल डिटरमिन किए होंगे। जब हर एक रोल डिटरमिन हो गया तो फिर हमने उस रोल से मुतल्लिक गोल्स लिखे कि इस रोल में मेरा ये गोल है। उसमें ऐसे गोल भी थे जैसे हैविंग फन, वो भी एक गोल था। जैसे मैं एक दोस्त के रूप में, मैं अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम गुजारना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्तों के पास मेरी अच्छी यादें हों और वो मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें, और जब उन्हें किसी की ज़रूरत हो और जब उन्हें कुछ सहारा चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, तो मेरा ऐसा किरदार हो, मेरा ऐसा रोल हो कि मैं उनको याद आऊं और वो मुझ पे डिपेंड कर सकें। यानी मैं एक अच्छी इंसान हूँ, एक डिपेंडेबल इंसान हूँ। तो रोल्स और गोल्स की एक्सरसाइज में से आहिस्ता 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 करके हमारी एक और नई चीज़ उसमें से उभरनी शुरू हो गई जो कि रोल्स और गोल्स से अलग थी। उस चीज़ का नाम था वैल्यूज़। यानी कि इस रोल में मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैंने स्टिक करना है, उनकी उन बेसिक प्रिंसिपल्स की को मैंने सामने रखना है और उनको मैंने नहीं तोड़ना और उन हुदूद से मैंने नहीं निकलना, और तभी मैं अपना वो रोल पूरा कर सकूंगी। तो अब तक जो पूरी बात हुई है, ये एक लिहाज से पूरा मैंने खुलासा बना दिया है आपके लिए। उम्मीद है कि आप इतना तेज़ी से इसको असिमिलेट कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 10 सेशंस इस पे भेजे जा चुके हैं ला तहज़न में। तो एक दफ़ा आपने अपने प्रायोरिटी सोच ली, आपने अपने रोल्स बना लिए, हर एक रोल का आपने गोल बना लिया, और उस गोल को आपने कैसे हासिल करना है, आपने उसको ऑनेस्टली हासिल करना है, आपने हार्डवर्क करना है, आपने डिपेंडेबल बनना है, ये उसूल हैं, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, और इनके ज़रिए आपने वो गोल्स हासिल करने हैं जो आपने हर एक रोल के लिए लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे तकरीबन यहाँ तक बात जब पहुँची थी तो ला तहज़न डिसकंटिन्यू हो गया था और विजन वाला सेशन जो है ये शुरू हो गए थे। अब विजन एक ऐसी चीज़ है, और इससे पहले मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, अब मुझे दोबारा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि जिसके जब तक हमारे पास विजन नहीं होगी, जब तक हमारे पास इस ज़िंदगी गुजारने का एक नज़रिया नहीं होगा, हम लोग एक बामकसद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सिंपल उर्दू में आप समझ लें कि जब मुझे अपना मकसद नहीं मालूम तो मैं बामकसद ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, ठीक है ना। तो आज मैं आपको एक किताब की तस्वीरें भी मैंने आपको भेजी हैं, मैंस सर्च फॉर मीनिंग, बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये, और जो मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक वर्कशॉप कराती हूँ, आप में से कुछ लोगों ने वो अटेंड की हुई है या उसका पावर पॉइंट देखा हुआ है। वो वर्कशॉप स्टीवन कवी कराते थे, अब तो वो भी फौत हो चुके हैं। तो स्टीफन कवी जो थे वो इस किताब के मुसन्निफ के एक लिहाज से आप ये समझें कि मुरीद थे। इस किताब का मुसन्निफ जो है उसका नाम है विक्टर फ्रैंकल और वो एक पीएचडी डॉक्टर हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरे ख्याल में वो अभी तक ज़िंदा हैं। जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में या कहीं पर वो साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते रहे हैं काफ़ी अरसा। और विक्टर फ्रैंकल जो हैं ये एक जर्मन यहूदी हैं और वहाँ पर इन्होंने कॉन्सनट्रेशन कैंप भी देखा है। जब जर्मनी में ये सारा हंगामा शुरू हुआ हिटलर के ज़माने में, दूसरी जंग अजीम में, और लोगों को कॉन्सनट्रेशन कैंप्स में बंद करना उन्होंने शुरू किया और यहूदियों को का जेनोसाइड उन्होंने शुरू किया, मारना उनको शुरू किया, तो विक्टर फ्रैंकल जो थे ये अपनी फैमिली के साथ वहीं जर्मनी में रहते थे और वहाँ पर ये अरेस्ट हुए हैं और फिर कॉन्सनट्रेशन कैंप में गए हैं। और इन्होंने उस कॉन्सनट्रेशन कैंप में अपनी ज़िंदगी का बदतरीन टाइम देखा है, यानी कि इन्होंने एक ऐसा टाइम वहाँ गुजारा कि इनकी माँ को गैस चेंबर भेज दिया गया, बाप को भी गैस चेंबर भेज के मार डाला गया, फिर इनका भाई था वहाँ पे जो जिसको मार डाला गया। इनकी वाइफ के बारे में मुझे नहीं पता, आई थिंक इनकी वाइफ भी गैस चेंबर भेजी गई थी और वो भी वहीं पे उनकी मौत हुई है इनके सामने। अब विक्टर फ्रैंकल जो थे ये मज़दूर थे क्योंकि वो नाजी फौज जो थी वो इन लोगों से काम लेती थी और ये वहाँ पे मज़दूर थे और इस कैंप में ये मज़दूरी करते थे और सुबह शाम दिन में एक दफ़ा कुछ खाने को मिलता था, जो भी होता था। और इन्होंने बड़े आराम से और सुकून से अपने इन सब प्यारों को मरते हुए देखा है। उसके बाद इनको वहाँ पे सज़ा हुई है कि वो एक डब्बे जैसा कमरा होता था, बिल्कुल एक डब्बा होता था, उसमें इंसान को बंद कर देते थे। बदतरीन सज़ा वो होती थी जिसमें से निकल के ना वो बाथरूम जा सकता था, ना कुछ खा पी सकता था और चंद दिन के लिए वो उस डब्बे में बंद हो जाता था। तो वो एक सेंसरी आइसोलेशन की एक्सरसाइज थी जो इन्होंने गुजारी है विक्टर फ्रैंकल ने। और ये जब वहाँ से उस कॉन्सनट्रेशन कैंप से जब ये निकले हैं और ये ज़िंदा निकल आए, जाहिर है अभी तक ज़िंदा हैं तो कॉन्सनट्रेशन कैंप से निकल आए हैं, तो इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी और इन्होंने फिर एक थेरी बनाई साइकोलॉजी की, थेरेपी की, जो क्योंकि उस ज़माने में जर्मनी में सिगमंड फ्रॉयड का बहुत ज़्यादा जोर था और फ्रॉयड की थेरीज़ जो हैं वो बड़ी एक कंट्रोवर्शियल थेरीज़ हैं। वो ये कहते हैं कि इंसान के जहन में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और जो गड़बड़ होती है इंसान की सोच में, वो उसकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह से होती है और वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थेरीज़ हैं साइको एनालिसिस की। तो विक्टर फ्रैंकल ने एक नई थेरी दी और जो सिगमंड फ्रॉयड की थेरी हाल उससे बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड को बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ और फ्रॉयड गलत कह रहे हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से और बड़े रसान से अपनी वो थेरी दी और उन्होंने कहा कि ये जो बात है कि हम कॉन्फ्लिक्टेड हैं, हम इंसान को साइकोलॉजी के मसले तब पैदा होते हैं जब हम कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। सिर्फ इन्होंने फ्रॉयड से इसमें एक मुख्तलिफ नज़रिया इख्तियार किया और इन्होंने कहा कि फ्रॉयड जो थे वो ये कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारी बीमारी है और इसकी वजह से हमें साइकोलॉजी के मसले पैदा होते हैं, हालांकि यही कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारा सबसे बड़ा तोहफा है क्योंकि हम ज़िंदगी में चलते रहते हैं यहाँ तक कि हमारे सामने एक कॉन्फ्लिक्ट आता है और कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब हमें दो मुख्तलिफ चीज़ों में से चॉइस करनी होती है और वो चॉइस जब हम नहीं कर पाते तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, हम कंफ्यूज होते हैं, हम गिल्टी होते हैं, हम कहते हैं कि ओहो मैं ये काम क्यों नहीं कर रही या ओहो मैं ये काम क्यों कर रही हूँ या अगर मैंने ये काम किया तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट है। और इन्होंने ये कहा कि कॉन्फ्लिक्ट का लम्हा जो है ये वो लम्हा है जिसमें हम अपने रिस्पॉन्सेस सिलेक्ट करते हैं। ये बात यानी कि ये इनकी पूरी जो फिलॉसफी है ये उस बात का एसेंस है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का लम्हा होता है जब हमारे सामने दो रास्ते आते हैं तो उसमें जिस चीज़ ने हमें उस दोराहे पे पहुंचाया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है किसी ने हमें धक्का दे के पहुँचाया हो सकता है जैसे नाजी लोगों ने इनको पकड़ लिया था, किसी ने हमें कैद करके वहाँ पहुँचाया हो, किसी ने हमारे सर पे गन रख के हमें वहाँ पहुँचाया हो सकता है हम बहुत मजबूर हो सकता है हम बहुत गरीब हो सकता है हम माजूर हों, यानी जिस वजह से हम उस दौराहे पे पहुँचे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्टिमुलस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। अब उस दौराहे पे उसमें जो भी रास्ता हम पकड़ेंगे और उस पे आगे जाएंगे उसका रिज़ल्ट भी हमारे कंट्रोल में फ़िलहाल नहीं है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो वाहिद चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो लम्हा है जिसमें हमने उस दौराहे में से एक रास्ते का इंतखाब करना है। वो लम्हा जो है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो हमें ये बताता है कि हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए और क्या होगी। और अगर हम अपनी ज़िंदगी ठीक उसूलों के मुताबिक गुजारते रहे हैं, अगर हम झूठ नहीं बोलते, अगर हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, हमने किसी का हक नहीं मारा, हम अपने खालिक के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि विक्टर फ्रैंकल बहुत रिलीजियस आदमी थे, अगर हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं तो उस लम्हे में यकीनन हम एक ठीक फ़ैसला करेंगे। तो वो जो मोमेंट है, वो जो लम्हा है कॉन्फ्लिक्ट का, उसको उन्होंने इतना एक्सपैंड कर दिया और इतना बड़ा बना दिया कि एक लिहाज से वो इंसान की पूरी ज़िंदगी पे मुहित हो गया। और साइको एनालिसिस के बजाय इन्होंने एक नई एनालिसिस इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियल एनालिसिस, यानी एक इंसान अपने ज़िंदा रहने की वजह क्या है और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहता है और वो अपनी ज़िंदगी से कब खुश होगा, इन बातों की एनालिसिस करके ही इंसान कॉन्फ्लिक्ट में से कामयाब तरीके से निकल सकता है। तो उम्मीद है मैंने बड़े सिंपल अल्फाज में आपको इनकी बात समझा दी होगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जब विक्टर फ्रैंकल के पास डिप्रेस्ड लोग आते थे, जैसे आप आजकल देखें आपके पास अगर कोई डिप्रेस्ड इंसान आए तो बड़ा मुश्किल होता है उन्हें हैंडल करना, और आपको समझ नहीं आती कि आप उनसे बात शुरू कैसे करें और आप उनसे पूछें क्या। तो विक्टर फ्रैंकल का कहना है कि आप उनसे पहला सवाल ये पूछें कि व्हाई डोंट यू कमिट सुसाइड। बड़ा एक सख्त सवाल है ये, और मेरे ख्याल में बहुत कम साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनमें ये हिम्मत होती है, या हम में से भी बड़े कम ऐसे लोग होंगे जिनमें ये अखलाकी जरूरत होगी कि हम किसी से ये पूछें, आप इतने डिप्रेस हैं और मुंह लटका के बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं कर रहे और आपकी ज़िंदगी इतनी वर्थलेस है, आप खुदकशी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इन्होंने बाकायदा इसका एक पूरी प्रोटोकॉल बताई है कि जब ये मरीज़ से पूछते थे कि आप खुदकशी क्यों नहीं कर लेते, तो मरीज़ ला महाला इनको कुछ ऐसी बातें बताता था जो उसके लिए अहम होती थी। मसलन वो ये कहे कि मेरी माँ मेरे बग़ैर नहीं रह सकती, या मेरे बच्चे मेरे बग़ैर उदास हो जाएंगे, या मुझे ख़ुदकशी से डर लगता है, मुझे मौत से डर लगता है। अच्छा, अगर आपको मौत से डर लगता है तो क्या आपको ज़िंदगी से मोहब्बत है? अगर आपको ज़िंदगी से मोहब्बत है तो आपको ज़िंदगी में किस चीज़ से मोहब्बत है, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं? और इस तरह ये जिससे बात कर रहे होते थे ये उसकी एक एनालिसिस कर करके उसको बहुत आराम से ये समझा देते थे कि ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है, एक खुशबाश ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त खुश होंगे। आपकी एग्जिस्टेंस का मकसद जो है वो ये नहीं है कि आप हर वक्त उछलें कूदें, खुशियां मनाएं और मेलों ठेलों पे फिरें और हंसें गाएं, एग्जिस्टेंस का मतलब ये है ही नहीं। और वो उनको बड़े आराम से ये समझा देते थे कि ज़िंदगी तो है ही बड़ी मुश्किल और ज़िंदगी तो आसान नहीं है, लेकिन जब आपको अपना मकसद मालूम होता है ज़िंदगी में तो आप हर एक मुश्किल और हर एक नर्म गरम और सख्त बात को बड़ी आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपना मकसद नज़र आ रहा होता है और आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और उन सब बातों में से निकल आते हैं, उन सब बातों से बाला होकर आप ज़िंदगी को सोचते हैं। तो बड़ी एक खूबसूरत बात उन्होंने की है विक्टर फ्रैंकल ने, उन्होंने कहा है टू लिव इज़ टू सफ़र, टू सर्वाइव। एक तो है टू लिव इज़ टू सफ़र, ज़िंदगी सफ़रिंग है, ज़िंदगी मुश्किल है। टू सर्वाइव यानी जो ज़िंदगी यानी जो सर्वाइव कर जाते हैं, इज़ टू फाइंड द मीनिंग इन दिस सफ़रिंग, यानी कि आपकी जो तकलीफ़ है और आपकी जो सफ़रिंग है, अगर आपको उसका मकसद पता है तो फिर आप उसे बड़ी आसानी से गुजार लेंगे और वो आपके लिए सफ़रिंग नहीं रहेगी। दूसरी बात उन्होंने जो की है वो ये है, इफ़ देयर इज़ अ पर्पज़ इन लाइफ एट ऑल, अगर ज़िंदगी में कोई मकसद है तो फिर ज़िंदगी में आने वाली हर तकलीफ़ का कोई ना कोई मकसद है, यानी कि कोई भी तकलीफ़ फिर बेमकसद नहीं है। इतने ये खूबसूरत बातें हैं और इतनी ज़बरदस्त बातें हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम विज़न में आगे बढ़ेंगे मैं आपको इनकी और बातें भी बताऊँगी, लेकिन ये जो उन्होंने ये आज मैंने आपको विज़न के हवाले से इनकी बातें पढ़ाई हैं और आज मैं आपको जो विज़न बोर्ड की तस्वीरें भेज रही हूँ वो आपने ग़ौर से देखनी है, ठीक है जी। विज़न जो है हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है, और याद रखें कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैंने आपको जितनी मिसालें दी हैं वो बहुत ऑर्डनरी लोगों की मिसालें हैं। हेलन केलर एक अंधी गूंगी बहरी खातून जिसने ब्रेल ईजाद की, उसके बाद ये विक्टर फ्रैंकल की मैंने आपसे बात की है, नाजी कैंप का एक कैदी जिसने ज़िंदगी के बदतरीन दिन गुजारे और जितनी चीज़ों से उसको ज़िंदगी में मोहब्बत थी वो उससे वहाँ छीन ली गई, और जब ये वहाँ से निकला तो इसने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया वहाँ से निकल के। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कभी भी ये नहीं कहना कि ओहो मैं तो ये नहीं कर सकती। आज जो मैं विज़न बोर्ड की तस्वीरें जब आप देखेंगे, ये एक चार्ट है, मैं अब जाके चार्ट ख़रीद के ले आई और मैंने उसके ऊपर आपके लिए विज़न बोर्ड बना दिया। छोटा सा मैंने एक प्रोजेक्ट किया, मैं ख़ुद ये काम कंप्यूटर पे करती हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो एक्सेल की तस्वीरें भी भेज दूँगी। मतलब मैं एक टेबल बनाती हूँ और उसके अंदर लिखना शुरू कर देती हूँ। तो जो भी मेरी विज़न है, मसलन मैं चाहती हूँ कि मैं 2 साल में एक किताब लिख लूँ, और ये डेफिनेटली मेरी एक विज़न है बाय द वे। 2020 में मैं पीडियाट्रिक्स की एक किताब निकालने का सोच रही हूँ, तो मैं आपको उसी की मिसाल दे देती हूँ। अब वो किताब निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? 2020 में अगर मैंने किताब छापनी है तो 2020 में मेरे पास उसका पूरा ड्राफ्ट होना चाहिए, मेरे पास उसकी पूरी एडिटेड वर्जन होना चाहिए, मैं उन लोगों से कांटेक्ट कर चुकी हूँ जिन्होंने वो छापनी होगी, मैं वो पैसे भी जमा कर चुकी हूँ जो उसको छापने में और उसको फिर आगे बाइंड करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरे लगेंगे। तो ये मोटे मोटे काम हैं। जब मैं अपनी उस गोल के बारे में और विज़न के बारे में सोचती हूँ तो मैं ये सारे काम लिखना शुरू कर देती हूँ। ये हर एक चीज़ आपने लिखनी है, याद रखें। हर एक आइडिया जो है वो प्रैक्टिकल रियलिटी बनने की उसमें कैपेसिटी होती है, इसीलिए अल्लाह ने उसको आपके दिमाग में डाला है। अल्लाह का कोई काम बेमकसद नहीं है, हमारे जिस्म का एक खलिया भी बेमकसद नहीं है, ठीक है, एक सेल भी हमारे पास बेमकसद नहीं, कोई एटम भी अल्लाह की तख्लीक में बेमकसद नहीं है। तो इतना बड़ा एक आइडिया जो आपके इतने खूबसूरत बड़े सारे दिमाग में आ जाता है वो कैसे बेमकसद हो सकता है? अपने आइडियाज़ लिखें और उनमें से जो आपको क्लिक करे और जो आपको लगे कि मैंने ये करना है, दिस इज़ वर्थ डूइंग, आप उसको करके देखें। फिलहाल सिर्फ 2 साल का एक प्रोजेक्ट करके देखें, 1 साल का प्रोजेक्ट करके देखें, ठीक है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं और इन्हीं आइडियाज़ में से और इसी तरह की बातों में से आपकी रियल विज़न निकलेगी। फिर विज़न बनाते वक्त जो है 4 प्रिंसिपल जो हमने पढ़े थे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के, वो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अपनी विज़न को नहीं प्यारे हो जाना, ठीक है, टू लिव, सबसे पहले अपने जिस्म को ज़िंदा रखना है, उसे सेहतमंद रखना है, उसे एक्टिव रखना है। आपने ऐसी विज़न नहीं बनानी कि 24 घंटों में से 25 घंटे आप उस पर काम करते रहें, नहीं, आपने ऐसी विज़न बनानी है जिसमें आपकी सेहत का भी ख्याल हो, आपके जिस्म का भी ख्याल हो, आपकी नज़र का भी ख्याल हो, आपकी कमर का भी ख्याल हो, हर एक चीज़। हमने ज़िंदा रहना है, जब हम ज़िंदा होंगे तो ये सारे काम करेंगे ना। तो लिव इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, लिव है। दूसरा है लव, अपनी रिलेशनशिप्स को नहीं ख़राब होने देना। ऐसी विज़न नहीं बनानी जिसमें आप लोगों से लड़ें झगड़ें। लेटली मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें आई हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात ये इम्तिहान है जो मेरे गले में पड़ा हुआ है, और इसकी वजह से आपको ये सेशंस भी कम आ रहे हैं और काफ़ी सारे काम, यानी एक हल्का सा इम्बैलेंस मेरी ज़िंदगी में पैदा हो गया है, विच इज़ रियली सैड। लेकिन ये भी एक एक्सरसाइज है जो मैं कर रही हूँ और सीख रही हूँ, और उम्मीद है कि आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ऐसे काम होते हैं जो इमरजेंसी में आपको उनके लिए अलग से टाइम बनाना पड़ता है। तो अपनी विजन लिखते वक्त इसका बहुत ध्यान रखें कि अगर देखें आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब होनी शुरू हो गई ना, तो आपकी विजन का कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा, बल्कि आपकी सेहत भी शायद ख़राब होनी शुरू हो जाए। लिव है, लव है, फिर है लर्न, टू लर्न। हमेशा ओपन रहना है, नई बातें सीखनी है, नए उसूलों को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। हदीस में है कि जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है तो उसकी ज़िंदगी का, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी विजन में ज़रूर कोई ऐसी बात रखें जो आपको, जैसे आप एक नया कोर्स अटेंड करें, एक नई बात सीखें, एक नया कॉन्सेप्ट सीखें, एक नई लैंग्वेज सीखें, आपकी विजन का हिस्सा होना चाहिए वो, ठीक है जी। उसके बाद है टू लीव अ लेगेसी, यानी कि काबिल कदर मीरास छोड़नी है। ये चारों चीज़ें आपकी विजन में इनबिल्ट होनी चाहिए। जैसे हमारा यही ला तहज़न में से और हया अल फलाह इन्हीं ग्रुप्स में से अब एक ऐसा, मैं कहती हूँ, एक इलीट ग्रुप निकल आया है जिन्होंने अपनी विजन रियलाइज़ की है। एक ऐसा ग्रुप निकला है बहनों का जिन्होंने ये कहा है कि, ओपनली मुझे आके कहा है कि डॉक्टर अफशां, आई थिंक दिस इज़ माई विजन। और बहुत खुशी हुई थी मुझे, क्योंकि मैं तो, मतलब मुझे तो अभी अपनी विजन भी पूरी तरह नहीं पता। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि उन लोगों ने मुझे आके बड़े खुले दिल से कहा कि हाँ, हमने सुना है आपकी बात और हमें लगता है कि हमारी ये विजन है और हम ये करना चाहते हैं और हम ये कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव बात है, बल्कि ये बात सुन के मुझे ये लगा कि ओहो यार अफशां, आप विजन पढ़ाते पढ़ाते आप अपनी विजन बनाएं। और इंसान को फील होता है कि ये सारी बातें बेमकसद नहीं हैं और एक विजन वाकई बनाई जा सकती है। तो ये दुनिया में काबिले कदर मीरास छोड़ना सबसे बड़ी बात है। और हमारी विजन जो है वो ऐसी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसके ज़रिए और जिसकी वजह से जब हम दुनिया से चले भी जाएं लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे। तो ये, और ये मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले भी शेयर किया है कि ज़िंदगी का मकसद खुश रहना नहीं है, ज़िंदगी का मकसद औरों को फ़ायदा पहुंचाना है, औरों को आसानियां देना है। अगर हमने कोई ऐसी बातें सीखी हैं अपनी ज़िंदगी में जिनकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है या हमारे जानने वालों को फ़ायदा हुआ है या हमने किसी को आसानी दी है, तो उस बात को हम आम करें, हम और लोगों को सिखाएं वो बात, और यही हमारी विजन होनी चाहिए, ठीक है जी। टू लिव, टू लव, टू लर्न, टू लीव अ लेगेसी, ये चार उसूल हैं। अब विजन बोर्ड की इम्पॉर्टेंस ये है कि आप जब उस पर अपनी विजन लिख देते हैं और अपने रोल्स और गोल्स उस पर लिख देते हैं और विजन हासिल करने का टाइम भी लिख देते हैं, जैसे आपको मैं जो चार्ट की तस्वीर भेज रही हूँ उस पर विजन 2020 लिखा हुआ है, यानी कि डेढ़ साल में या इस तरह कोई काम मैं करना चाहती हूँ, मिसाल प्रोजेक्ट एक्स उस पर लिखा हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट है, और मैं वो प्रोजेक्ट जो है इन चार उसूलों को सामने रखते हुए और इनको बैलेंस में रखते हुए मैं वो काम करना चाहती हूँ। वो काम जब मैं लिखती हूँ उस पहले दायरे के अंदर, तो गोया मैं उसको अपने जहन से निकाल के मैंने उसको दुनिया में, रियलिटी में रख दिया है और अब मैं उसको एनालाइज करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं उसकी एनालिसिस कैसे करूँगी, वो ऐसे करूँगी कि मैं अपने सारे रोल्स को देखूँगी कि ये सारे रोल्स मेरे कैसे फिट होते हैं मेरी इस विजन में। क्या मेरी विजन ऐसी तो नहीं है जैसे मेरी विजन में लिखा हो कि मैं साउथ वज़ीरिस्तान में स्कूल खोल रही हूँ, मिसाल के तौर पे। तो साउथ वज़ीरिस्तान में स्कूल खोलने का मतलब ये है कि मैं साउथ वज़ीरिस्तान जा रही हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने हस्बैंड को और माँ बाप को और बच्चों को पता नहीं कहाँ छोड़ के जा रही हूँ, किसके पास छोड़ के जा रही हूँ उनको। तो ये एकदम से मेरी विजन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, वो अनरियल हो जाती है, और उसमें जो लव वाला उसूल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो विजन मुझे अबैंडन करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात ये है, हो सकता है मेरी विजन ये हो कि मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ मसलन, ओहो चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो पता नहीं बचपन से ही मेरी कोई विजन है। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने के लिए अगर मैं ये देखूँ टू लिव, मेरी सेहत के ऊपर उसका क्या असर होगा, टू लव, मेरे रिलेशनशिप्स पे उसका क्या असर होगा, टू लर्न, उससे मैं क्या सीख सकती हूँ और उसके लिए मुझे कितने इल्म की ज़रूरत है, टू लीव अ लेगेसी, वो कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा मेरे बाद भी,
अब ये सब बातें जब मैं एनालाइज़ करूँगी तो मेरे जहन में एक छोटा सा खाका आएगा कि फ़िलहाल भाई मैं कोई 300 कमरों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो नहीं बना सकती, लेकिन 3 कमरों का एक छोटा सा चिल्ड्रन क्लिनिक बना सकती हूँ। मेरी वो विज़न जो है वो खुद ही स्केल डाउन हो जाएगी कि भाई 2 साल में अफशां बीबी आपने कोई मिरेकल नहीं कर देना। एडी साहब ने भी कितने सालों तक सिर्फ जो थे तो लावारिस मुर्दे दफनाए थे और उसके बाद एडी का कोई क्रेडिबिलिटी बनी थी और उनकी कोई सर्विस बनी थी। तो यानी मेरी विज़न तो वही रहेगी लेकिन वो स्केल डाउन हो जाएगी इन 4 उसूलों की रोशनी में। जब तक ये 4 चीज़ें बैलेंस में नहीं होंगी तब तक मैं अपनी विज़न को सही तरह एक्सिक्यूट नहीं कर सकती। फिर उस विज़न को हासिल करने के लिए मुझे किन चीज़ों की इमीडिएटली ज़रूरत है, किन लोगों से मुझे कॉन्टैक्ट करना है, किन लोगों को मुझे कॉल करना है, किन लोगों से मुझे कुछ परमिट्स लेने हैं, कुछ इजाज़तें लेनी है, गवर्नमेंट में मुझे किसको कॉन्टैक्ट करना है, मेरी फैमिली में मुझे किसको कॉन्टैक्ट करना है, ये सारे काम मैं लिखती जाती हूँ यहाँ तक कि लिखते लिखते मैं आज के दिन पर पहुँच जाती हूँ। और मुझे आज के दिन में क्या करना है ताकि मैं 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद प्रोजेक्ट एक्स मुकम्मल कर लूँ, वो काम मुझे आज ही शुरू करने हैं। ठीक है ना जी, ये है विज़न बोर्ड का कॉन्सेप्ट। आप इसको घर की दीवार पे बनाएं, आप इसको चार्ट पे बनाएं, आप इसको कॉपी में बनाएं, आप इसको कंप्यूटर पे बनाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना विज़न बोर्ड आज ही शुरू करें। विज़न बोर्ड इज़ द फर्स्ट स्टेप। वो चीज़ आपके जहन में जो कीड़ा कुलबुला रहा है ना और बड़े अरसे से खिचड़ी पक रही है, उसने कुछ नहीं होना जब तक आपके पास एक डेडलाइन नहीं होगी। नंबर 1, जब तक डेडलाइन नहीं होगी, अब मैंने 2020 डेडलाइन बना दी। नंबर 2, जब तक वो चीज़ जो है वो मुझे वो बैलेंस में नहीं होगी, जो 4 उसूल हैं मेरी ज़िंदगी के, जब तक वो चारों उसके अंदर बैलेंस में नहीं होंगे उसने नहीं होना। वो कहीं चलते चलते टूट जाएगी, गिर जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वो उसने नहीं चलना। क्योंकि अगर मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब होने शुरू हो गए मुझे उसे अबैंडन करना पड़ेगा, अगर मेरी सेहत ख़राब होनी शुरू हो गई मुझे उसे अबैंडन करना पड़ेगा। तो वो चारों चीज़ें मुझे साथ लेके चलना है। और फाइनली जब तक मुझे ये ना पता हो कि वो प्रोजेक्ट एक्स जो मैंने 2020 के एंड में मैंने अचीव कर लेना है, वो प्रोजेक्ट एक्स जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आज पहला कदम क्या उठाना है। तो याद रखें, ऑल द गुड आइडियाज़, जितने भी अच्छे आइडियाज़ होते हैं, आर ओनली ड्रीम्स। ठीक है ना जी, लेकिन जिस ड्रीम के साथ आप एक डेडलाइन लगा दें और जिसके साथ आप एक प्राइस टैग लगा दें, ओनली दे विल बिकम अ रियलिटी। तो आज ही आइए दुआ करते हैं और अहद करते हैं कि हमने जो भी सोचा और जो भी समझा उसको विज़न बोर्ड पे लिखना है और उसको आगे एक्सिक्यूट करना है और उसे आपस में शेयर करना है। आप 100 लोग हैं या जितने भी आप लोग हैं, 80 लोग हैं ग्रुप में, मुझे नहीं पता, और आप में से मुझे 6 लोगों की डेफिनेट विजन्स पता हैं, तो ये एक अच्छा खासा फिगर है। और मैं चाहती हूँ कि ये और भी बढ़े। आपस में शेयर करें, मेरे साथ शेयर करें, आगे बढ़ें, क्योंकि अब मुझे 3-4 ऐसे लोगों का पता है जो डेफिनेटली मेरी विज़न से मैच करते हैं। बल्कि अब मतलब कि हम बहनों में से ही एक बहन मेरी बिज़नेस पार्टनर है। हम लोगों ने मिल के एक जगह हायर की है जिसमें इंशाल्लाह मेरी विजन्स में से कोई एक विज़न है और उनकी विज़न उससे कोइंसाइड करती थी, क्योंकि वो भी वही काम करना चाहती थी और वो काम शुरू हो रहा है पेशावर में। तो इस तरह हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और आखिरी बात ये, क्योंकि इस सेशन के मुझे लगता है फिर 2-3-4 दिन और लग जाएंगे जब मैं अगला सेशन आपको भेजूंगी, तो आप फ़िलहाल विज़न बोर्ड पे ही काम करें। आखिरी बात ये है कि इंशाल्लाह दिसंबर में हम लोग पेशावर में एक विजन्स की वर्कशॉप का इंतज़ाम कर रहे हैं और उसमें आप सबको भी इन्विटेशन है और आपके प्यारों को भी इन्विटेशन है। और मैं चाहती हूँ कि वहाँ से हर कोई, कम अज़ कम जितने लोग वहाँ आएँ, इतनी मेहनत करें तो वो अपनी विज़न के साथ वहाँ से निकलें और उनको पता हो कि उन्होंने आगे क्या करना है इंशाल्लाह। तो दोबारा मिलने के वादे के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।